कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतिशे नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछय गोसाई करी चरणबंदन जा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन। महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया बरियसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिकेतां नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतम्। वंदे नंद ब्रजेस्त्रीणां पादरणुमवीक्ष्णश जसां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। শ্রীশ্রীমদ্ দামোদর অষ্টকম সত্যব্রত মুনি এবং সনাতন গোস্বামী গুরুবর্গ হামলোক অভিতক বৃন্দাবন ধামে গুরু বৈষ্ণব হৈতে কৃপাশে এ দামোদর লীলা এবং উসকে বৈশিষ্ট্য হামলোক শ্রবণ কীর্তন করনে কা প্রয়াস করতে হ্যাঁ। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कुबरात्म जो बद्ध मूर्त जद्वत तया मुझित भक्ति भाजो कृत तथा परम भक्ति सकम में प्रजत्स नमोक्ष ग्रह में स्थित दामोदरे हो। बतला रहे हैं कुबेर आत्मजो कुबेर के पुत्र एक पुत्र होने से आत्मजो बोलते आत्मजो मतलब दो पुत्र। ये लोग नलकुबेर मणिग्रीव ये लोग कुबेर के बड़े प्रिय आत्मजो आत्मवय जायते पुत्र बड़े प्रिय, ये लोग स्वतंत्र और पिता माता या गुरुजन बंधु बांधव किसी की अपेक्षा नहीं करने वाले, ये कैसे हैं तो बता रहे हैं। ये लोग सब माता पिता का इच्छा होता है मैं अपने संतान को पालन पोषण करूं, अच्छी तरह से नाम कमाएं और प्रतिष्ठित होए, बढ़िया अच्छा बने, किंतु पहले से ही पूर्व पक्ष कहते हैं क्या तुम्हारे चित्तवृत्ति ठीक है, चरित्र ठीक है, फादर ट्रेनिंग मदर ट्रेनिंग लिया नहीं, पिता बनने की इच्छा हो गया, माता बनने की इच्छा हो गई, अपना यदि साधन है और यदि चरित्र ठीक है और यदि सद्गुण संपन्न है तो पेड़ में जो फल लगते हैं तो आम आम के बीज में पेड़ होता है तो आम का, तो उसका फल कभी कसेरा कड़वा नहीं, वो मीठा फल होता है। तो कहते हैं माता पिता यदि साधन नहीं किया और चाहते हैं पुत्र को मारपीट करके और कैसे भी सुधार दें और बड़े अच्छा बना लें, किंतु अपना तो चित्तवृत्ति सुधार नहीं पाए तो दूसरे को क्या करेगा। इसलिए यहाँ पर नारद ऋषि कहते हैं नाम लेकर के कुबेर आत्मजो, जैसे बाप तो ऐसे बेटा, बाप को तो धन संपत्ति संग्रह करने में दिन भर लगे हुए हैं और धन कुबेर कितना धन संपत्ति इकट्ठा किया, किंतु उसका सद्व्यवहार किया नहीं किया। यदि अच्छा काम करते तो अच्छा फल आता, वो हमारे शिल्पी जो देवताओं के, वो क्या किया सब कुछ बनाता है वो, और वो क्या किया बोलते मैं अपने बेटा ऐसे सुंदर बनाऊंगा जो कि भूतों न भविष्यति, ऐसा सुंदर बनाऊंगा, किंतु आखिरी में क्या हुआ, बनाते 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 थोड़ी देर में एक चिक चिक करते एक चूहा निकल के चला गया। ऐसा क्यों? तो इससे कहते हैं नारद ऋषि कुबेर आत्मजो, कुबेर के आत्मा से ही ये पुत्र का उत्पन्न हुआ, तब ये पुत्रों से दुखी हो रहे हैं, वो लोग स्वतंत्र हैं और किसी के उपकार के लिए जीवन नहीं है, दुख देने के लिए अपना सुख के पीछे जिंदगी बनाया। शरीर में बल है, बहुत अर्थ है, इस दौलत राम दौलत के द्वारा सबको वशीभूत करना चाहता है। अब माता पिता को केवल नहीं संसार को दुखी बना दिया। तो उस समय पहले कुबेर जी इतना दुखी नहीं थे, अब जब पुत्रों की हरकतें देखा और सबको कष्ट देना शुरू कर दिया तो उस समय कुबेर जी देखा भगवान से यदि प्रार्थना करूं तो भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन काम है, पहुंच भी जाए अपना कर्मों का फल को लेकर के मैं आम जातना भोग रहे हैं और भोगेंगे, किंतु जब तक हम सुधरते नहीं हैं तब तक अपना कल्याण के मार्ग में हम चल नहीं सकते। तब उन्होंने नारद ऋषि के लिए प्रार्थना किया, सत्संग सेवदी निर्णम तत्व दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित सुबुद्धिमान संत वर्ष छिन्नती मन व्यसंग उक्ति भी। साधु के हृदय कैसे हैं? संत हृदय नवनीत समान बड़े कोमल हैं, किंतु साधु किसके तो बुरा नहीं करते, सबका कल्याण चेष्टा करते हैं। किंतु संत के अंदर क्या है, दुस्संग को दुस्संग से उनको सत्संग के द्वारा हृदय को निर्मल कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। किंतु सत्संग में आए या सत्कथा सुने ग्रहण करे श्रद्धा हो तब तो नारद ऋषि पहुँच गए नज़दीक में, पहुँच गए तो और मार काट करके दंगा और लड़ाई गाली गलौज अपमान करने लग गए। तो साधु का प्रभाव है, वो किसी से दबने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, परास्त होने वाला नहीं और किसी के वशीभूत भी नहीं होने वाले। कि वो गाली गलौज करे, मान अपमान करे, नाराज हो जाए और उनका कल्याण के लिए सोचे नहीं, ऐसे साधु का विचार नहीं है। तो इससे बताया साधु क्या किया, नारद ऋषि ने दुर्गुणों को हटाने के लिए और अच्छे बनाने के लिए उन्होंने उपाय सोचा। यदि ये शरीर के अंदर में मैं इनको छोड़ता हूँ तो क्या करेगा, ये और उद्यम करेगा और उत्पाद करेगा। क्योंकि जिनके पास आश्चर्य सूत श्रीवी एध मद मानव पुमान, जिनके पास प्रचुर आश्चर्य है, सुंदर रूप है, पांडित्य है, उच्च कुल में जन्म है, तो बड़ा अभिमान होता है, मैं कितना सुंदर हूँ। अब मेरा जिसको दौलत है, दौलत राम, वो तो किसी को परवाह करता ही नहीं। आज यदि पंडित है, पढ़ा लिखा है तो अहंकार फूले समय नहीं। अब कहते हैं उच्च कुल में जन्म है तो सबको घृणा करता है। तो नारद जी ने देखा ये चारों गुण में कोई कमी नहीं है, सब इनमें विराजमान है। उच्च कुल में जन्म और सुंदर रूप, धन दौलत है, और जो अभिमान पंडित है की सब कुछ है, इसको अभी ये शरीर में रहने लायक नहीं है। रहने से खुद सबको परेशान करेगा, सबको बद्दुआ मिलेगा और उसके द्वारा कर्म का फल भोगने के लिए कितने जन्म जन्मांतर नष्ट होगा। तो ये शरीर इनके लायक नहीं है, इसको यहाँ से हटाना है। ऐसे शरीर देना है जो साधन उपयोगी हो, बड़ा कठिन है। सुंदर शरीर मिल जाए, पैसा हो जाए, अर्थ हो जाए, रूप सुंदर हो और विद्या हो, फिर सबको भगवान के भजन में सेवा में लगाए, कोई बिरले ही होंगे, कोई कद्दू के सिक्के मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। इसलिए उन्हें सोचा दरिद्रता ही अंजन, जिसके पास कुछ नहीं होता है, दरिद्र होते हैं, वो क्या भगवान को पुकारेंगे, भगवान के पास प्रार्थना करेंगे है? वो भी नहीं करता, सड़क साफ है, बैठा रहता है सड़क में, किंतु भगवत भजन तो नहीं करता, भगवत स्मरण तो नहीं करता है? तो नारद ऋषि ने बहुत विचार किया क्या करना चाहिए, जिससे कि चाहे न चाहे सत व्यक्तियों की कृपा इनके ऊपर हो, सत्संग प्राप्त हो, कानों में भगवत गुणगान सुनाई पड़े। अभ्यास नहीं है, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगा, भगवत स्मरण करने की और भगवत कृपा के लिए प्रार्थना करेगा। अभी तो करेगा नहीं, अभी तो नारद जी पहुँचते ही नंगे धड़ंगे घाली गलौज करके और ईंट पत्थर डंडा तो छोड़ो, इतना गाली गलौज करने लग गया, किस लिए तू आया है यहाँ? बाबा जी बन के यहाँ आने की क्या काम है? चलो यहाँ से, क्यों? उसके भोग में बाधा हो रहा है। ये तपसराओं को लेके आया सरोवर में, नंगे धड़ंगे खूब मनमोजी अपना जो इच्छा सो कर रहे हैं। नारद जी पूछते ही उनके भोगों में बाधा पड़ गया। अब तो क्यों अप्सराएं कपड़े पड़े पहन करके दूर हट गई, सब ने छोड़ दी, दोनों भाई उतावला हो गया। क्योंकि राक्षसी वृत्ति तमसी वृत्ति उस समय अपने अंदर कुछ कंट्रोल नहीं रहता, अपने को बस में नहीं कर सकते। तो नारद जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो भगवत गुणगान कीर्तन करने स्मरण करने में मस्त है। वहाँ के वन उपवन, वहाँ के जलाशय, ये सब देख करके नारद जी को वृंदावन की स्फूर्ति होने लग गया। याद आया, यदि मैं इनको गोकुल में भेज दूँ, गोकुल में गोपीकुल गोपकुल गाभीकुल गोकुल हैं, वहाँ पर विराजमान है, किंतु वहाँ विराजमान है गोपाल, तो मैं इनको भेज देता हूँ वहाँ, जैसे तैसे करके वहाँ रहेगा, किंतु ऐसे जोनी में भेजूँगा भाग नहीं जाए, एकदम खूंटा गाड़ करके बांध दूँगा, गाय भैंस की तरह नहीं, ऐसे बांध दूँगा कि एकदम नंद भवन के दरवाजे में सदा विराजमान रहेगा। क्या सुनेगा? भगवान के गुणगान, भगवान के दर्शन, भगवान के उच्चिष्ट, भगवान के चरण धूत जल, भगवान के चरण धूलि, भक्तों के सब कुछ मिलेगा। और मिलते ही ब्रज में इनको भेजूंगा तो इनके अनर्थ और पाप राशि जो दुर्गुण है ये तो छोड़ने वाला नहीं है, किंतु मैं इसको ले लूँगा। कैसे लेंगे? जब इसके वृक्षों का पेड़ का जन्म दूंगा तो लोग डाली काटेंगे, पत्ते तोड़ेंगे, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तो इनके दुख होगा, तब वो कहीं जा कर के याद करेगा कि कितना भी स्वतंत्र कितना भी दुष्ट मैं बनूं, मेरे को भी दंड देने वाला कोई है। पहले तो ईर्ष्या होगा, मेरे को अभिशाप दिया, तन्मय हो जाएगा, दिन रात मुझे याद करेगा। नारद ऋषि ने मेरे को अभिशाप दिया, नारद ऋषि मेरे को पेड़ बना दिया, नारद ऋषि दिन रात गुरु मंत्र नहीं जप नहीं करेगा, गुरु जी नहीं करेगा, कि नारद 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 करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बद्दुआ दी। इससे बताया भजन चार प्रकार से होता है, कामात देशात भयात स्नेहात। ओ कहते हैं तुलसीदास जी, कामी ही नारी प्यारी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तेमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामी के लिए नारी प्यारी है, लोभी के लिए दाम प्यारा है, ऐसे मेरा कम मन होगा भगवान आपके चरणों में मेरा मन लग जाए? बोले ऐसा क्यों? बोलते कामी व्यक्ति 24 घंटा स्मरण करता रहता है, उसको दिल से उतार नहीं सकता, प्राण जाए भूखे रहे नंगे, किंतु वो अपने कामी ने नहीं छोड़ेगा। ऐसे निरंतर मेरा मन कैसे आपके चरण में लगे? तो नारद जी कहते ये तो यद तो मुझे कोई करेगा नहीं, जब दंड दूंगा ना पेड़ के जोनी में जाएगा, कितनी गर्मी सहन करेगा, और जीते जी हाथ पैर काटते हैं ऐसे डलियाँ काटेंगे, और पत्ते भी नहीं रहेंगे, पतझड़ हो जाएगा, और क्या खाना खाएगा, पत्ते खाना बनाता है, और लोग बाग आकर के क्या नहीं करेंगे, तो अब इसको याद आएगा कैसे कुकर्म किया, कैसे फल मुझे मिला। हम अपने कर्मों से बीमारी, दारिद्रता, दुख कितना भोगते हैं, किंतु प्रभु स्मरण नहीं होता। किंतु यदि ये मुझे याद करेगा, मैं भगवान की भजन करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, तो मेरे याद के फल से क्या होगा, अपने आप भगवत स्मरण हो जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगा। जैसे सद्गुरु क्यों करते हैं, यदि सद्गुरु किया, गुरु को याद किया, गुरु के चरणाश्रय लिया, गुरु अनर्थों से, पाप ताप से, सब चीज़ से मुक्त करके उनको अपने जैसे भगवान के प्रति अनुराग है, ऐसे भगवान के चरण अनुराग मैं भक्ति दे देंगे। तो नारद जी कहते हैं, मैं तो जबरदस्ती दे नहीं सकता जब तक मुझे याद नहीं करता। साधु के पास पूरा खजाना है, सब कुछ दे सकता है, किंतु अगला लेने वाला तो हो। तो ये जब मुझे दुख के समय कैसे भी मुझे याद करेगा, हैं? मैं अच्छा था, कुबेर का पुत्र, कितना बलवान धनवान, आज ये साधु ऋषि भजन करके शक्ति प्राप्त की और मेरे को पेड़ बना दिया। तो दिन रात नारद 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 करता रहेगा, और इस बीच में भगवत चरणामृत मिलेगा, भगवत दर्शन मिलेगा, गुणगान सुनने को मिलेगा, भगवान की चरणधूलि मिलेगा, धामवासियों के नज़र पड़ेगा। क्यों? पेड़ में डालियाँ टहनियाँ पत्ते हरे भरे होते हैं, छाया में आकर के बैठेगा सब, और वहाँ भगवान के गुणगान कीर्तन आदि करेगा। तो इसको बिना चाहे, इच्छा नहीं भी है, तभी इनको कुछ सुनने को मिलेगा। और क्या, जब बाप देखेंगे मेरे बेटे को पेड़ बना दिया, बाप को दुख होगा, बाप भी अब बेटों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, नारदी से प्रार्थना करेंगे, इनको कैसे भी उद्धार कर दूँ। तो हमारे कल्याण के लिए कोई यदि सोचने वाला है, शुभचिंतक बोलते हैं उसको, ऐसे शुभचिंतक कोई है तो हमारा कल्याण हो भी सकता है। और हमारे लिए कोई सोचे नहीं है, हम आज़ाद है, लोग देख के घृणा करते हैं, क्यों लोग डरते हैं, बड़े दुर्दांत तो हैं, ना जाने क्या कर डालेगा, इसे दूरी बना के रहो, बोलो मत कुछ भी, इससे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अभी नारद ऋषि बहुत विचार किया, तुरंत भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आपके बिना इच्छा के, बिना आदेश के मैं आज स्वतंत्र कुछ काम करने जा रहा हूँ, इन दोनों को मैं गोकुल में भेज रहा हूँ, मैं जानता हूँ उद्यमी चरित्रहीन, दुष्ट को दुख देने वाला दुष्ट दानव आज मैं ब्रज में भेज रहा हूँ, किंतु कुछ नहीं कर पाएगा, हैं? ऐसे बांध करके रखूँगा दोनों को, कुछ नहीं कर सकता है, ट्रस्ट से मस नहीं करेगा, आप कृपा कर देना, बस। अब नारद जी ने तो बोल दिया, अब तुम यहाँ नहीं रहने लायक हो, तुम्हारा ये शरीर में रहने योग्य नहीं हो, बहुत उदम किया, अब तुम ब्रज में जाओ, पेड़ का जन्म लो। और दूसरी तरफ में टीकाकार कहते हैं, नारद जी ने देखा इनको भोग करने की इच्छा है, बड़े लालची है, तो ये क्या भूख करेगा चमड़ी और दमड़ियों में, इसमें क्या रखा है, भगवत लोक में जाएगा तो भगवत कृपा मिलेगा, भगवत रस मिलेगा, कितना भोग है, कितना शांति है, कितना सुख है, ये तुच्छ खुजली मचता है, भोगों में क्या रखा है, इससे तो अच्छा है कि मैं ऐसे भगवत धाम में भेजूंगा जहाँ नित्य आनंद चिन्मय रस है, उसके द्वारा परमानंद मस्त तृप्त हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। प्रभु ने, नारद ऋषि ने उन लोग बहुत कुछ सोच विचार करके ब्रज में भेजा। और क्या कहते हैं, कहते हैं बद्ध मूर्ता जसोदा माता ने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया। और प्रभु सोचते हैं, याद आया, मेरे को तो माँ ने बांध दिया और नारद ऋषि ने कुबेर के दो पुत्रों को भी बांध करके यहाँ रख दिया। और कृष्ण सोचते हैं बंधन में कैसा है, और ये दोनों अर्जुन के पेड़ बन करके यहाँ पर पड़े हैं, तो इनको मैं तो दामोदर हो गया, मेरे उधर में दाम बांध दिया, रस्सी बांध दी उखल के साथ, अब इनको भक्ति देना है, साधारण भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति देना है, जिससे कि इन लोगों के चित्तवृत्ति सदा के लिए पवित्र हो जाए। और नहीं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे, साधारण भक्ति देने से भक्ति उत्थ अनर्थ, चार प्रकार अनर्थ होता है, सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ, अपराध उत्थ। और तो ये जो अपापुत्थ, तो अब यदि अनर्थों को लेकर के यदि इनको यदि भक्ति भी दे दी, इनके पास ताकत आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, अपव्यवहार करेगा। दौलत दे दिया किसी को, जतेच्छ नष्ट करेगा, व्यवहार अच्छा काम नहीं करेगा। और यदि प्रेमा भक्ति हो जाए तो वो कभी एक पैसा कभी अर्थ नष्ट नहीं करेगा, अपने भी भोग नहीं करेगा, भगवान के सेवा भक्तों की सेवा ही करेगा। इससे भगवान जानबूझ करके सबको सब कुछ देते नहीं है। योग्य यदि संतान है तो पिता माता उनको सब कुछ दे दे, सुखी होते हैं। वो एक गुरु का शिष्य था, दो, तो एक को एक रुपया दिया गुरु ने, दूसरे को भी एक रुपया दिया। तो एक हफ्ता बाद पूछते हैं, बेटा कुछ है तेरे पास, क्या है, एक रुपया दिया, एक हफ्ता में होता क्या है, ऐसे गुरु हैं, गुरु पिता गुरु माता गुरु भगवान के स्वरूप है, अरे एक रुपया दिया। गुरु को दूसरे सोना दिया 10-20, गुरु हंसने लग गया, अच्छा बेटा और चाहिए ना, दे दूंगा, ठीक है ठीक है, नाराज मत होए, बड़े मुश्किल से शिष्य मिलते हैं, चेला मिलता है, गुरु मिले लाखों लाखों, चेला मिले नौ एक, तो चेला मिला तो एक रुपया क्या, अच्छा तेरे को मैं और दे दूंगा। दूसरे चेले से पूछा, बेटा एक रुपया दिया, अभी क्या किया, तुम्हारे पास है और कुछ दे दूँ, गुरु जी आपने एक रुपया दिया, मैंने सोचा गुरु महाराज ने दिया है एक रुपया, तो मैं गुरु महाराज जी को इससे कुछ बढ़ा के तो दे दूँ, तो मैंने बड़ा कष्ट करके मेहनत करके उससे कुछ व्यापार बिजनेस करके मैंने 2 रुपया कर लिया, गुरु महाराज ये लो 2 रुपया। बोले बेटा ठीक है, अब मैं तेरे को 10 रुपया देता हूँ, क्या करूँगा गुरु महाराज, नहीं तू लाइक है ले ले 10 रुपया रख ले। उसको जाकर 5 रुपया दिया दूसरे को, बोले 5 रुपया, हफ्ता में 7 दिन में 1-1 रुपया देते 7 रुपया होता, और उसको तो 10 रुपया दिया, मुझे 5 रुपया दे रहा है। फिर एक हफ्ता बाद पूछा, क्या किया, 5 रुपया खत्म हो गया, खैनी खाने को भी पैसा नहीं है, चूना पान का चूने में भी लग जाता है कितने पैसे, चाय नाश्ते में कितना लगता है, अरे आप मुझे 5 रुपया देकर फिर पूछ रहे हैं कहाँ गया। ऐसे गुरु होते हैं, गुरु का चक्का छोड़ा दिया, गुरु बोलते अच्छा चेला मिला मुझे, चेला तो अब तो चीला बनाएगा मुझे। फिर दूसरे से पूछा, बेटा 10 रुपया 2 रुपया 12 रुपया हुआ ना गुरु महाराज, तो अभी कितना है तुम्हारे पास, कुछ दे दूँ, नहीं गुरु महाराज मेरे पास 12 रुपया क्या, और मेरे को तो 20 रुपया हो गया, मैंने उसको मेहनत करके जोड़ लिया, ये ले लो 20 रुपया ले लो। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, बेटा 20 रुपया नहीं, अब तुम हमारे आश्रम को संभाल सकते हो, ये लो ये सब कुछ तेरे तुम्हें दे देता हूँ मैं, अब मुझे चाहिए नहीं, अब हमारा उम्र हो गया, तुम संभालो, सबकी सेवा करो, खर्च करो, जो कुछ है तुम्हारा है। और इसको क्या करा, बेटा तुम जाओ आश्रम वास तुम्हारा हो गया, अब तुम घर जाके गृहस्थी बनो, सेवा और तुम काम टाम करो, अपने माँ बाप की देखभाली करो, अपनी जिंदगी पालो, जाओ तुम आश्रम रहने लायक नहीं हो, क्योंकि हम तुम्हारे चापलूसी से तुम्हारे सेवा हम करने लायक नहीं है, हम वृद्ध है, अब जाओ तुम जाओ। तो गुरु से कपट, मित्र से बैर, या अंधा या कोढ़। गुरु भोग करने के लिए हम लोग आश्रम में नहीं आए। नारद जी कहते हैं यदि इसको कुछ सुजोग दे दी तो ये छोड़ेगा नहीं, ये मेरे पर और चल बैठेगा, इसलिए इनको देना है तो प्रेमा भक्ति देना है, जिससे कि भगवान में प्रेम हो जाए, भक्तों में प्रेम हो जाए, तो ये अनर्थ नहीं करेगा। और यदि अन्यत्र भेजता हूँ तो इसका प्रेम क्या आत्मेंद्रिय प्रतिबंसा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिबंसा धरे प्रेम नाम। भगवान के लिए यदि प्रीति करे, भगवान भगवान के भक्त उनके लिए नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। आज जो अपने इंद्रियों तोषण के लिए सब समय चेष्टा करता है तो उसका क्या हो जाएगा, कामना वासनाएं अपूर्ण तो होंगी, वो उसको कभी पूरा नहीं कर सकता और दुखी सब समय बना रहेगा। आज जो भगवान के लिए सब कुछ करने लग गया, भगवान सोचेंगे उसके पहले भक्त सोचेंगे, सारा विश्व सोचेंगे उनके लिए, वो सदा सर्वदा प्रसन्न सुखी रहेगा। तो शुभचिंतक हमारे कोई होए, हमारे कल्याण के लिए कोई सोचने वाला होए, हैं हम भजन करके पार नहीं पाएंगे, किंतु हमारे लिए कोई करने वाला तो होए, सोचने वाला कोई नहीं सोचता। वो कहते हैं गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, इतना दुष्ट, इतना उद्यमी, सबको नाक में दम कर रखा है, तो उसे कोई नहीं कुछ बोलता, देखता है डर के मारे हाथ जोड़ लेता है। और एक बच्चा इतना शरीफ, इतना ईमानदार, इतना पढ़ा, क्या बड़े गुणी, उसको सब डांटता है, थोड़ी बात पे भी डांटता है। तो वो बच्चा बोलता है देखो वो तो, उसको तो कुछ बोलता नहीं है, पिताजी को बोलते, पिताजी उसको तो कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को क्यों डांटते हो। बोले बेटा आगे समझेगा अभी नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए तू यदि गलती करेगा खराब हो जाएगा ना, सबको दिल में दुख पहुँचेगा, इसलिए तेरे को आगे बढ़ाने के लिए गाँव वाले भी बोलता है, मास्टर भी स्कूल में बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, तेरे माँ भी बोलते हैं, अच्छा इंसान बना, क्यों बिगड़े, नष्ट क्यों हुआ, और तो बिगड़ चुका है, उसको सुधारना इतना आसान नहीं है, वो तो हो गया, दादा बन गया तो दादा ही उसको सुधारेगा, गुंडे को गुंडे ही सुधारेगा, बदमाश को बदमाश ही ठीक कर सकता है। तू शरीफ है और अच्छे बन, इसके लिए सब लोग तेरे को बोलता है, खुश हो गया, अच्छा पिताजी डांटो कोई बात नहीं, किंतु नज़र से उतारना नहीं, हम गलत संगम में पढ़ नहीं जाऊँ। तो जिसके शुभचिंतक है, सब लोग सोचते हैं है? तो उसका कल्याण तो हो ही गया। तो नारद जी कहते हैं इसके दुर्गुण से माता पिता दुखी है, किंतु इसके लिए कोई सोचता नहीं है, क्यों? उद्दंड है, इसके लिए मैं इसको ऐसी जगह में भेजूंगा जहाँ कि पेड़ के नीचे आकर के बैठ करके भी बोलेगा अरे कितना सुंदर छाया दे रहा है, सर्दियों में गर्मी देता है, गर्मियों में ठंडा करता है, और फल वाला पेड़ नहीं दूंगा, क्योंकि फलवंत जो पेड़ होगा ना सब फलों को तोड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे बनाऊंगा। तो अर्जुन के पेड़ बनाया और से फल नहीं लगते, अन्न फल कोई काम का, किंतु उनके जो चमड़ा है, छिलका है, छाल है, बलकल है, वो बड़े उपकारी हैं। किसी को यदि हृदरोग हो गया, हार्ट का डिजीज हो गया, तो छिलकाओं को उतार करके ले आता है पेड़ से, और उसको क्या करते हैं, कूट काट करके उबाल करके उसका पानी पीता है, तो उसका हृदरोग चला जाता है। और जीते जी सब छिलकाओं को काट काट करके निकालेगा, बताओ कितना कष्ट है, तब समझेगा दूसरे को दुख देने से कैसा होता है। किसी को एक थप्पड़ मारा ना, उसके पहले अपने गाल में दो थप्पड़ मार के देखो कैसा लगता है। अब ये जो छिलेगा जीते जी तभी नहीं पता पड़ेगा, बिना अनुभव के कभी कोई व्यक्ति कुछ समझदार नहीं होता है, देखो इसको अनुभव करना है, किंतु ब्रज में ऐसा कोई करता नहीं है। पेड़ का छाल भी नहीं उठाते, पेड़ को काटते भी नहीं है, और किसी को दुखी नहीं करते। तो उन्होंने कहा तो इसके प्रेम भक्ति कैसे दूँ, प्रेम कैसे मिलेगा इनको, इसके लिए कहते हैं भक्ति भाजो कृतो च, भक्ति नहीं मैं प्रेमा भक्ति सकाम में प्रजोच्य न मोक्ष ग्रह में स्थित, मुक्ति नहीं दूंगा। मुक्ति देने से फिर ही कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, इसको बांध के रखे, जैसे दामोदर को माने बांध दिया, वही दामोदर ही है इसको उद्धार करेगा। तो जब इंतजार कर रहे थे प्रभु को माने, आज सुबह से शाम तक मिलके रस्सी में बांध दिया, और बांध करके पेड़ में नहीं खूंटा में नहीं अरे उखल के साथ बांध दिया। माँ को गुस्सा आया, ये उखल में के ऊपर चढ़ करके हमारे सिक्के में से जितना मक्खन था, जितना लड्डू था, जितने मिठाई सब कुछ निकाल निकाल कर बंदरों को खिला दिया, वो कौवे को खिला दी और तोते को खिला दी, गिलहरी को खिला दी, सबरे बर्बाद कर दी। ये उखल एक खल है, ये एक दूसरा खल है, तो दोनों के जोड़ा ठीक है, एक खल को दूसरे खल से बांध दो, और ऐसे नहीं ऐसे एकदम पीछे के गांठ लगा दो जिसे खोल ना सके, नहीं तो घूम करके जाकर खोल लेगा, खोल ना सके और उखल को लेके कहीं जा भी नहीं सकता, इतना भारी है, घर के अंदर ही बैठा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। किंतु माँ को पता नहीं, जैसे तैसे तो दिन भर परिश्रम करके बांधने की कोशिश की, तो बांध न सके तो पसीने से तर हो गया, हैरान हो गई। तब उस समय भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, सारे माताएं आ गई, अरे जसोदे इसके ललाट ने विधाता ने बंधन नहीं लिखा तो कैसे बांधेगी, बोले मैं बांध के छोड़ूंगी, मेरे पेटे में जन्म लिया तो बांध देंगी कैसे, नहीं बांधूंगी जरूर, तू रस्सी ला दे। तो बोले तेरे घर में तो गायों के बांधने वाला बहुत रस्सी है, तो ला दे। एक के बाद जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, कितनी लंबी रस्सी हो गई, किंतु एक बार भी घूम करके बांध न सके। सबने चिढ़ाया, आखिरी में पसीने से तर हो गई, सुबह से शाम हो गया, तो क्या सोचा, बांधूंगी तो जरूर, हे नारायण। अब नारायण के सेवा करती थी ना, उनके शरणागत हो गई, हे प्रभु मेरा लाज रखो, ये अपने बच्चों को नहीं बांध सकती हूँ मैं, तो मेरे में क्या रखा है, आज मैं तो बड़ा हैरान हो गई, कैसे बच्चा है, ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मैं बांध नहीं सकती हूँ। आज सुबह से देखो खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे को गोदी नहीं ली, लाल लड़ाया नहीं, एक तो उम्र में बच्चे हुए तो फिर भी उनको कुछ नहीं, उसको भी खाना नहीं दिया, बस लगी हुई है, हाथ पकड़ी हुई है, किरोसी घुमा रही है, बांधूंगी, इतना आसान है बांध देना। अब क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं समातु सिन्न गात्राय कृपयासी सबंधने, माँ का परिश्रम देखकर, दिष्टा परिश्रमम कृष्ण, माँ का परिश्रम देखकर के बड़े कृष्ण दुखी हो गए, अच्छा माँ मुझे बांधना चाहती है, पसीने से तर हो रही है, हैरान हो गई है, और सब उल्हाना दे रहे हैं, चिड़ा रहे हैं, किंतु भगवान बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा बांध लो एक बार, देखो बांधने से क्या होता है, बांध तो लो, मैं नहीं चाहता कुछ गलत करके गलत फल को ही मांग लो बुला लो, बांधने की जरूरत नहीं, मैं तो बंधा हुआ हुई है तुम्हारे प्यार से, तुमको छोड़कर के मैं जाने वाला तो नहीं हूँ, अन्य कोई जा सकता, वैकुंठ गोलक वृंदावन छोड़कर के तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे प्रेम से, अब तुम इसमें भी खुश नहीं, तुम्हें फिर रस्सी से बांधने से प्रेम बढ़ जाएगा क्या, तुम्हारा बन जाऊँ क्या, ऐसा क्या बात है, बेटा दीदी अपना है, इतना प्यार है, इतना हक है, तो बांधने की जरूरत क्या है, क्या रस्सी के बंधन में ज़्यादा ताकत है, प्रेम के बंधन में ताकत नहीं है, या तो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इससे तुम बांध नहीं सके, या तो तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है तुम प्रेम के मारे तुम सोचते हो और चाहिए, मुझे और चाहिए है। तो नारद जी कहते हैं ऐसे प्रेमी भक्त जब प्रभु को अपने प्रेम से बांधेंगे तो प्रभु देखेंगे बंधन का क्या कष्ट है, किंतु उसका फल क्या है कि इन दोनों को प्रभु उद्धार कर देंगे। सोच रहे हैं नारद ऋषि, प्रार्थना कर रहे हैं, बांधने वाले बंधन में आने वाले नहीं थे। प्रभु कहते यदि मेरे को बांध दे मैं तो विश्व सर्वस्व हमारा सब में मैं हूँ, मेरे अंदर सब कुछ समाये हुए है। मेरे को बांधने का मतलब सब कुछ बांध लिया, कितने इतना वजन लेके चलेंगे कैसे हमारे माता। किंतु नारद जी की प्रार्थना से प्रभु ने बंधन तो स्वीकार कर ली। अब स्वीकार किया तो कहते प्रभु आपको तो माँ ने बांधी कि ये तो बंधे हुए आपके दरवाजे में, इनको भी मुक्त कर दो ना, इसको अपने साथ ले लो ना। तो उस समय क्या हुआ, कृष्ण को बांध करके जस्त माता सोचे आज सुबह से तो रसोई से कुछ बनाई नहीं, खाना कुछ है नहीं, घर साफ किया नहीं, गोपाल का ठाकुर जी का भी कुछ करा नहीं, घर में नौकर चाकर आज है नहीं, सबको विदा दे दी, आज छुट्टी है दीपावली का तो आज कोई नहीं है, मैं जल्दी गई चौका में कुछ तैयारी करूँगी, बच्चों को भी नहलाऊँगी धुलाऊँगी कुछ खिलाऊँगी। रोहिणी भी नहीं है आज, वो भी अपने बाप के घर गए, बल दाऊ भी गया। जब कृष्ण को बांधने लगे ना बहुत रोया, इतना रोया सिसक सिसक करके, बोला अरे दाऊ भैया माँ बांध रही है मुझे बचा ले, आजा भैया आजा। आया नहीं। अरे बड़ी मैया तू कहाँ है, देख माँ मुझे बांध रही है मार रही है मुझे बचा ले। किंतु मैया भी आई नहीं, बड़े दुखी हो गए, कोई नहीं आया। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा, इतने में कृष्ण के छोटे छोटे सखा सब आ गए, आ गए तो हंसने लग गया। तब सखा लोग बोलने देख ले और उदम करेगा ना, कैसे बांध दिया देख ले, अब कभी उदम नहीं करेगा ना। बोले भैया खोल दे। अच्छा चुपचाप रहे अभी खोल देता हूँ। सब लोग मिल गए, बोल मैं खोलूँगा, बोल मैं खोलूँगा, किंतु जितना खोलने गया और गांठ बंद सख्त हो गया, क्योंकि खोलना तो आता नहीं, जानता तो है नहीं कुछ, कोई दांतों से खोलना चाहता है कोई हाथों से खोलना चाहता है, और खींच रहा है इधर की रस्सी का गांठ और बंद गया और फंस गया। खोलना तो छोड़ो बंधन और ज़्यादा हो गया और कृष्ण कस गए। अब कृष्ण बोले अब क्या करूँ, अपने हाथ बोल तू खोल ले, हाथ ही जाता नहीं, छोटे छोटे हाथ लिए पीछे जाता ही नहीं, कैसे खोल ले। इतने में बोलते हैं सका लोगों को बोल रहे हैं चलो आज ना हम गाड़ी गाड़ी खेलेंगे, हम खींचेंगे तुम लोग धक्का लगाना और लुढ़कते लुढ़कते हम लोग मैदान चले जाएंगे, तुम लोग उसके ऊपर बैठ जाना, हम तुम लोगों को खींच के ले जाएंगे। किंतु ये नहीं जानते कि ओखल जो दी घूमेगा चक्का कर उसके नीचे आकर सब दब जाएंगे पीस जाएंगे, बच्चों में इतना बुद्धि कहाँ है, खींचेंगे तो इतना ताकत है खींचने का, पर तुम लोग सब धक्का दो। तो घर से जैसे जैसे करके लुड़का लुड़का करके दरवाजे तक आ गए। किंतु अब बोले अब तो आई गया, अब खेत जाऊँगा खेत में खेलूँगा, वहाँ आज तो अच्छा खेलना होगा, तुम बैठ जाना हम खींचते रहेंगे बैलगाड़ी बनाएंगे। किंतु प्रभु की इच्छा क्या है, जोगमाया लीला शक्ति क्या चाहती है, पेड़ में से निकलना बड़ा कठिन, दोनों पेड़ ऐसे हैं तो बीच में अटक गया। अब प्रभु खींच रहे हैं और वो लोग धक्का लगा रहे हैं, ताकत काम नहीं कर रहा है, अंदर से निकल नहीं रहे। आज गुस्सा आया बहुत, ये कहाँ से आया पेड़, हमें खेलने भी नहीं देता है, माँ ने बांध दिया और तू भी हमारे विरोधी बन गया, हमारे दरवाजे में रहता है और हमको खेलने भी नहीं जाने नहीं देगा। बहुत गुस्सा आया। ऐसे प्रभु रोज दिन इन लोगों के बीच में जाते, दोनों स्पर्श करते हाथ से, कभी छाती में भी चिपका लेते, कभी खेलते लुका चोरी छिपा छिपी सखाओं के साथ, माता ने भी स्पर्श किया, नंद बाबा ने भी, सब ने, किंतु आज प्रभु को गुस्सा आया एकदम, कैसे पेड़ इतना बड़ा बड़ा और हमारे विरोधी खेलने नहीं जाने देगा, माँ से गुस्सा नहीं, अब गुस्सा सारे इनके ऊपर हो गया, माँ से नाराज होकर करे ही किया, अब सारे गुस्सा इसके ऊपर उतार ली। बोले तुम लोग धक्का दो मैं खींचता हूँ इन लोगों को, आज नहीं रहने दूंगा यहाँ। बस ऐसे खींचा और उन लोगों ने धक्का लगाया, दोनों पेड़ एकदम कांपते कांपते धड़ाम से गिरा, कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं, एक पेड़ इधर गिरा तो एक पेड़ इधर गिरा, यदि बीच में गिरते तो क्या होता? वो बांधे हुए चुपचाप बैठे हुए और सखालू सेम को डर गए, ये क्या हुआ? नंद बाबा भागते 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 भागते, सारे ग्वाले लोग बाहर थे, सबरिच आया, क्या हो गया? कोई दानव दैत्य आ गया, राक्षस आ गया है, मोहर बालक कहाँ है? ढूंढने तो देखा कृष्ण के कुमार में रस्सी बांधे हुए है उखल के साथ, कृष्ण सेम करके बैठे हैं चुपचाप, अब तो हंस रहे थे, बाबा को देख करके ना हंसी टासी तो गया, एकदम शीशक शीशक करके रोने लग गए बड़े जोर जोर से है। मानो प्रिय व्यक्ति कभी मिलते हैं ना बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद, दुख के समय, तो उनको देख करके दुख 10 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ गया। बाबा पूछते बच्चों से क्या हुआ भाई, तो बोले ये खींचा तो दोनों पेड़ गिर गए, उसमें कोई देवता लोग निकल आया, इनकी परिक्रमा की स्तुति की, ये लोग चले गए उत्तर दिशा में। बाबा बोलते बच्चे क्या है, बच्चे क्या जाने, किंतु यदि हमारे बच्चे मर जाते। ऐसे कृष्ण को गोदी ले ली, बड़ा मुश्किल से गांठ खोला और किसने बांधा, अब बोल नहीं पा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, नंद बाबा का शरीर एकदम गीला हो गया। और क्या हुआ, किसने बांधा? तो बड़े मुश्किल से बोला मैया ने, क्यों डरते तो है, अब तो बांध दिए, अब यदि बोल दूँ तो फिर ना जाने और क्या शासन करेगी, डर तो है। वो कुंती माता पूछती है कभी कृष्ण को, बोलते अरे आपको जब माँ ने बांधा था तो आप रो रहे थे, सचमुच से रो रहे थे कि कुछ कुछ नाटक कर रहे थे? बोले बाप रे, तुम्हें मैया मिला नहीं ना, तुम्हें तो पता नहीं ना हमारे माँ कैसे है, जिसके डर के मैंने विश्वमंडल ना, मैं कांपता हूँ, मैं घबराता हूँ, और तुम लोग यदि पहुँच जाओ ना पासंग में तो तुम्हें पता पड़ेगा हमारी माँ कैसे है, इतना प्रेम है, मैं उसका जवाब लाजवाब है, मैं जवाब नहीं दे सकता, हमारे प्रति कितना ममता है। मैं उस डर के मारे कि मेरा प्रति ममता कम नहीं हो जाए, छोड़ ना दे मुझे, क्योंकि उदम करता है गलत होता है ना, एक दिन दो दिन सहन कर, तीसरे दिन तो निकाल देता है, चल नहीं चल, हमें नहीं चाहिए ऐसे औलाद। वो डर तो है कि हमारे बच्चे मुझे, माँ मुझे छोड़ दे, तो इतना प्यार, इतना लाल दुलार, और ऐसे माँ का प्रेम छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, वैकुंठ छोड़ कर तो माँ के पास आया, एक माँ मिला मुझे, किसी अवतार में तो मेरे को माँ ऐसे मिले ही नहीं है। एक समय कौशल्या ने राम को कहा, राम तुम वनवास जा रहे हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें आदेश दिया, मैंने तो आदेश नहीं दिया, आधा तो मेरा भी हक है, ठीक है तुम वन में जाकर लौट के आ जाओ, ये मेरा आदेश है, अभी आ जाओ, जाओ वन के, वन में जाके घूम के आ जाओ, अरे तो चल मैं भी चलता हूँ, तू ऐसा चलती हूँ। तो किंतु जसोदा माता का प्यार कैसे है, लाखों करोड़ कौशल्या माता से भी कितना अधिक गुना है, इसलिए भगवान को इसमें भी डर है। जगत में कोई शुद्ध प्रेम किसी के पास है नहीं, स्वार्थ तो पर है सब, किंतु यशोदा माता प्रेम ऐसा नहीं है। इससे आज हैं कृष्ण बड़े मुश्किल से पिताजी से बोले, पिताजी गोदी में ले लिया, बोले दिन भर खाए नहीं, जाकर यमुना जी में स्नान कराया, गोदी में ले ली और जेब में से लड्डू निकाल दी हैं, तो अब गला तो सूख रहा है, गायों के पास गौशाला में जाके थन से दूध काट करके मुंह में डाल दी, मिश्री दे दी हैं, अब भूल गए सब चीज़, बाबा की गोदी में, बाबा के लाड़ में अब भूल गए। शाम को रोहिणी आई, बलदाऊ आया, तो देखा जसोदा तो अवस्था खराब है, क्योंकि एकदम ठूठ की तरह सूखे लकड़ी की तरह पड़ी है, न रोती न बैठती न बात करती न कुछ, जान है कि नहीं ये भी पता नहीं। तो रोहिणी को पता पड़ा सब लोगों से, पड़ोसी से, रोहिणी बोले जाऊँ, जब तक तो इस बेटे को नहीं लाऊँ तब तक तो ये मर जाएगी। तो गई, दाऊ को भेजा, भैया को पकड़ के ला, बाबा की गोदी में खेल रहा है। वो गया तो ऐसे झटका दी, वो लुढ़क गया कितना दूर, किंतु दाऊ में बहुत ताकत है। बोले जब मैं माँ बांध रही थी, रो रहा था, तेरे को बुलाया था, आया था क्या मेरे को बचाने, अब आया, चल नहीं हंसे। अब रोहिणी मैया आई, बेटा चलो नहीं जाऊंगी, तो कहाँ रहेगा, बाबा के पास, क्या खाएगा, गाय की दूध पीऊँगा, लड्डू खाऊँगा, मिश्री खाऊँगा, जाऊँगा नहीं, जाएगा नहीं, नहीं। बहुत समझे हम नहीं, कहाँ सोएगा बाबा के पास। तो मैं यहाँ से चिढ़ हो गया। अब रोहिणी ने देखा ऐसे तू जाएगा नहीं, बोले देख एक बार सुन, तू जाएगा नहीं ना, तेरी माँ का रोती रोती यदि मर गई तो क्या करेगा। अब तो सहन नहीं कर सका, खूब रोने लग गया, मैया मैया कह करके। रोहिणी ने गोदी ले ली, लाया जसदा में, गोदी में पटक दिया। जसदा का हो सबा सह नहीं, डकर डकर कर गायों की तरफ इतने जोर जोर से चिल्ला कर रोने लग गई। बड़े मुश्किल से शांत कराया। नंद बाबा आया, बोले नहीं कुछ भी। रोहिणी ने खाना बनाया, बच्चे दोनों को गोदी लेकर के बाबा ने खिलाया। जसदा का तो डर के मारे लकड़ी हो गई, ना जाने आज क्या दंड देंगे। किंतु नंद बाबा कुछ बोले नहीं। तो कहते हैं ये जो प्रेमा भक्ति है इसका कितना मूल्य है, प्रेम के अंदर में कितना सामर्थ्य है। भगवान को वशीभूत नहीं करना, भगवान इस प्रेम के लिए खुद ललचते हैं। ऐसे यदि प्रेम भगवान के लिए नहीं मिले तो भगवान क्यों हमारे वश में होंगे। अब हम काल सुनेंगे, आज बहुत देर हो गया। गौर प्रमाणंदे।